श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 32वां अध्याय जिसका नाम है कर्म कांड के कार्यों में लिप्त व्यक्ति। यहां नाम लिखा है कर्म अंग्रेजी में लिखा है फ्रूटिव एक्टिविटीज, उसको कर्म कांड ही कहते हैं। इस अध्याय का नाम है कर्म बंधन। इस अध्याय में बोल रहे हैं भगवान श्री कपिल देव। जो बोल रहे हैं कपिल देव बोल रहे हैं, देवहूति माता के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। देवहूति माता ने एक प्रश्न पूछा था और वैसे भी देवहूति पहली कन्या है जो माता पिता से पैदा हुई है इस धरती के ऊपर। कन्याओं में स्त्री देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये तीन बेटियां स्वयंभू मनु और शत्रुपा की। तो सृष्टि में पहली कन्या को उपदेश दे रहे हैं उनके पुत्र कपिल देव भगवान। और इस मां ने प्रश्न क्या पूछा था कि लोग इस संसार में बंधन में कैसे जीव पड़ जाता है, बार बार इसी संसार में आता जाता क्यों है, उसका कारण क्या है। ये एक प्रश्न है जिसके उत्तर में ये चल रहा है कपिल देव की शिक्षा। प्रभुपाद जी ने एक अध्याय के ऊपर विशेष रूप से प्रवचन किए थे तो उसको लिखा है टीचिंग ऑफ लॉर्ड कपिल देव की शिक्षाएं। तो ये शिक्षा है हम सबके लिए कि इस संसार के बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए। बंधन का कारण क्या है वो इससे पहले अध्याय में बताया गया। अब बंधन पड़ने के बाद आदमी मुक्त क्यों नहीं होता है, पहले गर्भ में कैसे बच्चा आता है, संसार में कैसे फंसता है, ये तो एक अध्याय हो गया। अब कपिल देव आज वर्णन कर रहे हैं देवहूति माता को सिद्ध आश्रम में बैठकर बिंदु सरोवर के तट पे कि मां इस संसार में जब आदमी गृहस्थ में प्रवेश करता है तो दो शब्द हैं शास्त्र में विवाहित जीवन के लिए, एक है गृहस्थ आश्रम और दूसरा है गृह मेधी। गृहस्थ आश्रम का मतलब है जहां साधन भजन के साथ स्त्री पुरुष अपने परिवार में भगवान को केंद्र बनाकर रहे हैं तो हो गया गृहस्थ आश्रम, और स्त्री पुरुष बच्चों के साथ केवल संसार के सुख में प्रगति में भोग में लगे रहे तो वो हो गया गृह मेधी। तो बस अंतर सिर्फ इतना है कि एक में केंद्र भगवान है और एक में केंद्र गृह घर परिवार है। भगवद गीता के 13वें अध्याय में जहां ज्ञान का वर्णन है वहां गृहस्थ आश्रम में बंधन के वर्णन का भी वर्णन है, पुत्र ग्रह आदिशो। वहां श्रील प्रभुपाद ने लिखा है जिस घर में ये चार काम होते हैं, पहला काम घर में ठाकुर जी का मंदिर है और उसकी पूजा होती है, दूसरा भगवान के लिए भोग बनता है भोग लगता है और प्रसाद परिवार खाता है, तीसरा जिस घर में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है, और चौथा भगवद गीता भागवत पढ़ी जाती है वो गृहस्थ आश्रम है, और जहां ये चार चीजें नहीं रहती हैं वो गृह मेधी है। तो गृहस्थ ये चार चीजें जिस गृहस्थी के घर में है वो गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, और ये चार चीजें जहां नहीं है उनका वर्णन आज हम सुनने जा रहे हैं, उसको गृह मेधी कहते हैं। जो आज तो 32वें अध्याय का दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे। पहले श्लोक को पहले सुन लीजिए। पहले श्लोक में कपिल देव कह रहे हैं, अथ अथ का मतलब जो 31वां अध्याय समाप्त हुआ उसमें जो शिक्षा दी है उसको पहले सुननी चाहिए। अथ का मतलब इसलिए, इसलिए का मतलब 31वां अध्याय का जो 48वां श्लोक में उसमें लिखा है, सही सही दृष्टि से युक्त, सही सही दृष्टि से युक्त। इसका मतलब वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि निर्णय कर सकती है कि सही क्या है गलत क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसकी दृष्टि सम्यक दर्शनया सही दृष्टि, सम्यक दर्शनया, तो सही को और गलत को समझने वाला, तथा भक्ति से पुष्ट होकर, एक तो दृष्टि सही होनी चाहिए और दूसरा भक्ति से पुष्ट होना चाहिए। पुष्ट किसको कहते हैं, बच्चे को मां दूध पिलाती है ना, उसको बोलते हैं उसका पोषण कर रही है। पुष्टि का मतलब जैसे भक्ति मां है, उसकी गोद में बच्चे की तरह भक्त रहेगा तो उसकी पुष्टि होगी। पुष्टि का मतलब भक्ति के द्वारा रक्षण। तो जो भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के एवं उसके अलावा भौतिक पहचान से पहचान के प्रति नाशवादी, ये शब्द है बुद्धया योगो वैराग्य युक्तया माया विरचते लोके। इसका अर्थ ये है, दो काम पहले कौन से करे, पहले तो उसकी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, सही गलत का भेद होना चाहिए, कि भागवत सुनना सुबह ठीक है, अखबार पढ़ना ठीक नहीं है, इतनी बुद्धि होनी चाहिए, समझे। सुबह भगवान का दर्शन करना ठीक है, चाय की दुकान पे नहीं बैठना चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सामान्य लोग क्या करते हैं, मंदिर में आने से पहले बाहर बैठ के चाय पीते हैं फिर मंदिर में आते हैं। हाँ, तो ये इसको सम्यक बुद्धि कहते हैं, कि इतना तो कम से कम अंतर होना चाहिए ना। और दूसरा भक्ति से पुष्ट होना चाहिए। पुष्ट का मतलब किसी भक्त के संग में भक्ति के रक्षण के साधन को करने वाला होना चाहिए। दो काम ये करे और तीसरा काम क्या करे, भौतिक पहचान के प्रति निराशवादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर, इसका मतलब जो लोग, जो सारे लोग काम कर रहे हैं उससे अपने आप को अलग कर ले। भौतिक पहचान, भौतिक पहचान का मतलब ये सामान्य जो भी संसार के कार्य लोग कर रहे हैं उनसे अपने आप को अलग कर ले। मनुष्य को तर्क द्वारा, मतलब अपने बुद्धि के निर्णय द्वारा, अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देना चाहिए, गिरवी कर देना चाहिए। इस तरह वो इस जगत से अपना संबंध छुड़ा सकता है। ये जो पीछे की लाइन है, अंग्रेजी का पुस्तक होता तो हमको समझ में आता है लिखा क्या है इसमें, इसका अर्थ ये होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि यह शरीर प्रकृति ने दिया है, आत्मा भगवान का अंश है, शरीर प्रकृति को अर्पण करना है वापस और आत्मा को भगवान के धाम में जाना है। तो ये निर्णय जो कर ले तो ठीक है, अथ नहीं तो अथ का मतलब ऐसे नहीं करेगा तो क्या होगा। भगवान कपिल देव ने कहा, ग्रस्त जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस तरह वो आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है, वो पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता है। अगर ऐसे नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, फिर संसार में धार्मिक कार्य करेगा, यज्ञ आदि करेगा, अर्थ कमा, धन कमाएगा, भोग करेगा, स्वर्ग में जाएगा, फिर वापस संसार में आएगा, फिर यज्ञ करेगा, फिर भोग करेगा, फिर जाएगा स्वर्ग में, फिर वापस आएगा। यह इसका अर्थ है। अब ऐसा व्यक्ति उसका वर्णन है, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा। अर्जुन पूछा, अगर मानो के मां देवती पूछे ये तो अच्छा काम कर रहा है भाई, 108 कुंडी यज्ञ करा रहा है, 108 कुंडी बड़ा यज्ञ करा रहा है, इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहा है। तो कपिल देव कहते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके हृदय में भक्ति कभी आ नहीं सकती। ये आज का श्लोक है, तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। स का मतलब ऐसा गृहस्थी जो यज्ञ आदि के कर्म में लगा हुआ है भोग के लिए। तो लिखा क्या है, सचापि भगवत धर्मात् काम मूढ़ प्राणमुख यजेत कृतोभिर्वान्। क्या है शब्द से, यजेत कृतुभिः देवान् पित्रां च श्रद्धया अन्वित्तः स चापि भगवद्धर्मान् काममूढः प्राकमुखः यजेत कृतिभिः देव कृतिभिः देवान्। ये शब्द है कृतु भी, यजेत कृतु भी देवान् पित्रां च श्रद्धया अन्वितः यचापि भगवद्धर्मान् काम मूढ़ा प्राक मुखः यजेतः कृतभिः देवान् पित्रांश्च श्रद्धया अन्वितः। अब इसके शब्दों को देखिए, सह का मतलब ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ में इंद्रिय तृप्ति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, भोग के लिए यज्ञ आदि करता है, ये अर्थ हुआ स का। स च अपि और भी, ये तो ठीक है। शब्द है भगवत धर्म, भगवत धर्म का अर्थ होता है दो मार्ग वेदों में है, एक को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग जिसमें गृहस्थी लोग चलते हैं यज्ञ आदि करके कर्मकांड करते हैं, दूसरे मार्ग को कहते हैं निवृत्ति मार्ग जिसमें सन्यासी साधु लोग जाते हैं जो संसार के झमट में नहीं पड़ते हैं, और तीसरा मार्ग है भागवत मार्ग, भागवत धर्म जो भगवान ने विशेष रूप से भगवत गीता और भागवत में दिया है। तो भागवत धर्म का मतलब है भगवान की प्रेममयी भक्ति। और एक बार प्रभुपाद ने प्रवचन किया था भागवत धर्म, उस पुस्तक का नाम था, और 11वें स्कंद श्रीमद् भागवत में नव योगेंद्रों ने जो उपदेश दिया है निमि महाराज को, और वही उपदेश नारद जी वसुदेव आदि को जहां दे रहे हैं द्वारका में, उस पूरे प्रसंग का नाम प्रभुपाद ने लिखा था भागवत धर्म। भागवत धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति। इसमें कुछ इसमें गृहस्थी भी और सन्यासी भी सब साथ चल सकते हैं, ये धर्म सबके लिए सामान्य है। तो भागवत धर्मान, इसका अर्थ प्रभुपाद ने लिखा है भक्ति से, भागवत धर्म का अर्थ है भक्ति के द्वारा। और फिर दो शब्द बड़े अच्छे हैं, क्या क्या शब्द है, भगवत धर्मान के बाद शब्द क्या है, काम मूढ़ा। काम का मतलब कामनाएं, इच्छाएं, और मूढ़ा का मतलब जो मूर्ख, मूढ़ भौतिक काम के इच्छाओं में ही लिप्त है, काम मूढ़। और इसका अर्थ प्रभुपाद लिखते हैं, काम मूढ़ का काम वासना से, काम वासना से अंधा। काम मूढ़ का मतलब काम वासना से अंधा, इच्छाओं से भरा हुआ व्यक्ति। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में युधिष्ठिर महाराज नारद को कहते हैं कि हम गृहस्थी हैं, और वहां शब्द कहते हैं काम धी मूढ़, ऐसे शब्द है कि हमारे संसार की इच्छाओं से बुद्धि मूढ़ हो गई है। ये युधिष्ठिर महाराज जैसे भागवत पुरुष भगवान के भक्त कह रहे हैं कि ग्रस्त में रहने वाला कितना भी अपने आप को संभालने का प्रयास करे फिर भी उसकी इच्छाएं उसको घेरे रहती हैं। तो वहां धी मूढ़ लिखा है, ग्रस्त धी मूढ़, और यहां है काम मूढ़। काम मूढ़ का मतलब इच्छाओं से घिरा हुआ, वो इच्छाएं उसको अध्यात्मिक भगवत भक्ति से अंधा कर देती है। अंधा किस चीज से करेंगे कि भक्ति के बारे में वो देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। तो ये हो गया काम मूढ़। और तीसरा शब्द क्या है, प्राक मुख। इसका अर्थ प्रभुपाद ने लिखा है प्राक, हां प्राग मुख से, प्राग मुख से, प्राग मुख से मुख मोड़कर, प्राग मुखा। इसके इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक इसका अर्थ ऐसे कर सकते हैं कि इसका मुख प्रकृति की ओर होता है, भगवान की ओर नहीं होता है। मतलब भौतिक चीजों में, प्रकृति का मतलब भौतिक चीजों में, भौतिक चीजों में वो बहुत ज्यादा लिप्त रहता है और भगवान की तरह उसका मुख नहीं है। और एक यहां जो प्राग मुख लगता है, प्राग से स्थित प्रज्ञ, जैसे जिसकी बुद्धि भगवान की तरफ हो वहां नहीं है, संसार की तरफ जिसकी बुद्धि है। हृदय में भगवान भी बैठा है कि नहीं, हमारे परमात्मा के रूप में, और हम भी आत्मा बैठे हैं ना अंदर। अब भगवान का मुख ऐसे है, समझो ऐसे इस तरफ, और जीव ने क्या कर दिया है, अपना मुख फेर के ऐसे कर दिया, बैठा तो उधर ही है। ये हो गया प्राक मुख, भगवान से मुख मोड़ के संसार की ओर करके बैठा है। अब करना सिर्फ ये है, इसको गर्दन से पकड़ के घुमा के आई से करना, बस इतना काम करना है। भक्ति का अर्थ काम इतना ही है, जो मुख भगवान से मुड़ के संसार की तरफ चला गया है उसको वापस भगवान की ओर मोड़ना है। वो हिंदी में कहते हैं 36 और 63 का आंकड़ा। अब हमारी हालत है 36 वाली, एक 6 की टांगे इधर और 3 की टांगे इधर, ऐसे बैठे, और 63 हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो प्राक मुख का अर्थ है भगवान से मुख मोड़कर संसार में लिप्त व्यक्ति। तो क्या करता है, यजेत, यज्ञ करता है, नहीं पूजा करता है। कैसे पूजा करता है, कृतु, कृतु का मतलब है यज्ञ, भी ही यज्ञ आदि से पूजा करता है। किसकी करता है, देवान, देवताओं की करता है। देखो वहां शब्द है कृतु देवान, और किसकी करता है, बोला पितरान, और पितरों की करता है। कैसे करता है, श्रद्धा भी ही, श्रद्धा से करता है, श्रद्धा से देवताओं और पितरों की पूजा यज्ञ आदि से करता है। लेकिन है कर्म में अंधा, इसलिए भागवत धर्म का पालन नहीं कर सकता। ये इसका अर्थ हुआ। अब पढ़े इसका प्रभुपाद जी के द्वारा जो अनुवाद है उसको पढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। भागवत धर्म मतलब भक्ति से विहीन, उनके पास भक्ति नहीं आती है। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने तथा देवों एवं पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी वे कृष्ण भावना अमृत अर्थात भक्ति में रुचि नहीं लेते। ये प्रभुपाद ने इसका एक भाव लिखा है कि ऐसे लोग, अब यहां इस श्लोक को देख के आप देख लीजिए, श्री चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं तब कह रहे हैं इस संसार में असंख्य जीव हैं और उनमें से कुछ चल सकते हैं कुछ नहीं चल सकते, जो चल सकते हैं उनमें मानव सबसे कम है, चलने वालों में पशु पक्षी आदि नहीं, जो चल सकते हैं उसमें कुछ पृथ्वी में है कुछ आकाश में है और कुछ जल में है, और जो पृथ्वी में है उसमें सबसे कम मानव है। अब मानवों के अंदर भी आधे तो कर्मकांड में लगे हुए, आगे आधे तो धर्म को जानते ही नहीं, और जो आधे धर्म को जानते हैं उसमें आधे ऐसे हैं जो यज्ञ आदि में लगे हुए, उसमें से प्रायः सब यज्ञ आदि में लगे हुए, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, रोज दान पुण्य करते हैं, यज्ञ में लगे हुए हैं, लेकिन भक्ति की तरफ उसको कहो हरे कृष्ण जपो बोला इसका समय नहीं है। हाँ, ये श्लोक उन लोगों को दिखा रहा है जो धर्म का काम तो कर रहे हैं लेकिन धर्म को जान नहीं रहे। धर्म देने वाला कौन है? धर्मात् तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म तो भगवान ने दिया है, तो जिसने धर्म दिया है उसी को जानना चाहिए, उसी को पहचानना चाहिए, उसको छोड़ के धर्म के नाम में वो यज्ञ आदि देवता और पितरों की प्रसन्नता के लिए करते। तो इस श्लोक से आपको इस संसार में जो धार्मिक लोग हैं वो सारे दिखेंगे और भक्ति की ओर वो आकर्षित नहीं होंगे। प्रभुपाद जी ने इतना यहां प्रचार करने का प्रयास किया भारत में, ऐसे लोग भक्ति की तरफ बिल्कुल आए ही नहीं। महाराज हम यज्ञ करेंगे, आप आए बड़ा अच्छा है, आप फल ले लीजिए, हरे कृष्णा नहीं जपेंगे, यज्ञ करेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा अब मैं ऐसी जगह जाऊं जहां कम से कम लोग ऐसे धर्म में अटके हुए तो नहीं है, वैसे कितने भी बिगड़े हुए उनको सुधारना आसान है लेकिन ऐसे बिगड़े हुए को सुधारना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग का सुख पहले भोग लिया है ना, अब कहते वापस वहीं जाके भोगेंगे, इस दुनिया वाले तो धक्के खा के परेशान है, उनको तो सुधारा जा सकता है लेकिन इनमें से कोई भक्त बन जाए बहुत मुश्किल है, भक्ति में रुचि ही नहीं रखते, कृष्ण भावना में आने की इनकी इच्छा ही नहीं होती है, वो समझते जो हम कर रहे हैं यही अच्छा है। ऐसे जो कोटि कर्मी मध्य, ऐसे करोड़ों इकट्ठे कर लो, कोई एक ज्ञानी कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ, उनमें से एक कोई होता है जो ज्ञानी होता है, कोटि ज्ञानी मध्य कोई एक मुक्त, ऐसे ज्ञानी तो बहुत है लेकिन जो मुक्त हुआ है कोई एक होगा। और तब चैतन्य महाप्रभु कहते कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, कोटि करो करोड़ों जो मुक्त है अपने आप को मानते हैं उनमें से दुर्लभ एक कृष्ण भक्त है। तो आप समझ लीजिए कि भक्ति उनको, ज्ञानियों तक को भक्ति प्राप्त नहीं है, मुक्तों को मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती है, मुक्ति के बाद ही भक्ति शुरू होती है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, ये मुक्ति है। मद भक्ते लभताम लभते पराम, ये भक्ति है, मुक्ति के बाद भक्ति होती है, ये 18वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो अब आइए प्रभुपाद जी का तात्पर्य विशेष रूप से इस श्लोक के ऊपर पढ़े, जिसमें भगवद गीता के आधार पर ऐसे लोगों को जो प्राक मुख है मूड है जो प्राक मूड है ना कर्म मूड है, वो भगवद गीता और भागवत दोनों के आधार पे उनको कम बुद्धि वाला समझा गया है। इसका अर्थ है जो सामान्य लोग हैं वो तो बिल्कुल नीचे के स्तर है, ये तो ये है वो लोग हैं जो आर्य हैं, वेदों का वर्णन तो करते हैं, यज्ञ आदि तो करते हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते, उनका वर्णन है। ठीक है, भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है, कामैस्तेष्टे हृत ज्ञानाः कामैस्तेष्टैर हृत ज्ञानाः। जिनकी कामनाएं ज्यादा होती हैं उनका ज्ञान चुरा लिया जाता है, ज्ञान उनका हरण किया, हरण हिरते है हिरेत में हिरण के हरण करना किसको बोलते हैं, उठा जाना, तो उनका ज्ञान चुराया जाता है। तो यहां ज्ञान की परिभाषा क्या होगी, कामेश तैश तैर हृत ज्ञान परपंदेन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्था प्रकृति निहता स्वयं, अपने स्वभाव के अनुसार वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं, उनका ज्ञान हरण कर लिया गया है। तो कौन सा ज्ञान, ये ज्ञान कौन सा ज्ञान, सातवें अध्याय में ज्ञान की परिभाषा क्या है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स ज्ञान, ये सातवें अध्याय का श्लोक है ना भाई, हा क्यों जी सातवें का है ये, ज्ञान ज्ञान की परिभाषा है सातवें अध्याय की, वासुदेव सर्वमिति, श्री कृष्ण सर्व पूजन है, जगत गुरु है, सर्वव्यापक श्री कृष्ण वासुदेव को जो सब कुछ मानता है, ऐसा ज्ञानी दुर्लभ है, वो महात्मा है। तो ये लोग इस ज्ञान से वंचित हो जाते हैं, ये वासुदेव को नहीं जानते, ये प्रकृति के कुछ अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये भगवद गीता के इस श्लोक का भाव है। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, वे इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवद गीता के आमुख में प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर दो लाइनें लिखी हैं, सारा संसार अपने इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है, सारा संसार, सारे जीव, सारा मानव केवल इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहा है और कभी भी सुखी न हुआ है और न होगा। और फिर कहते हैं श्री प्रभुपाद जी, लिखते हैं, भगवान का नाम ऋषिकेश है, जो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने में आसक्त रहे वो सुखी है। बहुत बड़ा सिद्धांत है, इंद्रियों के पीछे तो भाग रहे हैं तो इंद्रियों को छोड़ नहीं सकते, तो किसकी इंद्रियों को सुख करने या सुखी करने का प्रयास करें, अपनी को या कृष्ण की को। अगर कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो भक्ति हो गई, और अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हो गए काम मूढ़। बस ये अंतर है। और प्रभुपाद जी उससे उधर लिखते हैं, कृष्ण ये चाहते हैं और उनका ये आदेश है, उनका ये निर्देश है, और यही गीता का केंद्र बिंदु है। दिस इज द सेंट्रल टीचिंग ऑफ गीता। इसलिए शास्त्रों के अंदर जो भक्ति के भाव को जानते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तब क्या कहते हैं, श्री कृष्ण प्रीति अर्थे, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हम काम किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जप किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। वो प्रसन्न हो जाएगा तो हमको सेवा मिलेगी, हम उसके सेवा में लग गए तो हमारा जीवन सफल हो गया। तो इंद्रियों की पूर्ति के लिए आसक्त तो सारा संसार है, लेकिन किसकी इंद्रियों के, अपनी इंद्रियों के। इसलिए जो अपनी इंद्रियों के भोग के लिए अति अधिक आकृष्ट रहते हैं, फलतः इसलिए वे देवताओं को पूजते हैं। अब एक लाइन में इसका अर्थ ऐसे समझ लें कि देवताओं को पूजने वाले कौन हैं, जो अपने इंद्रियों, अपने इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, अपने इच्छाओं की पूर्ति करने वाले। चौथे अध्याय में क्या श्लोक है, चौथे अध्याय भगवद गीता का श्लोक, ग्यारहवां बारहवां श्लोक होगा, कोई जरा विचार करो, आता है किसी को याद? हाँ जी, कांक्षता कर्मणाम सिद्धये यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। कांक्षते कर्मणाम सिद्धिम, जो अपने इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं इस संसार में और कहीं नहीं, इह इस संसार में देवताओं की पूजा करते हैं। कांक्षत कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता, इस संसार में देवता की पूजा करते हैं, गोलोक में नहीं, वैकुंठ में नहीं। इह का मतलब इस संसार में देवता की पूजा करते हैं। तो देवता की पूजा कौन करते हैं? जो काम वासनाओं से भरे हैं, कामनाओं से भरे हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं। तो हमको क्या होना चाहिए? निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम, अतेव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत। भुक्ति का मतलब काम की इच्छा के लिए देवताओं को पूजा करने वाले। मुक्ति का अर्थ ज्ञान के द्वारा संसार के बंधन से मुक्त होने वाले, और सिद्धि का मतलब योग के द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले। तीनों अशांत, चैतन्य महाप्रभु है, तीनों अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भगवत भक्त को अपनी कोई कामना नहीं है, लेकिन कृष्ण की इच्छा पूर्ति कर ले, बड़े मंदिर बनाने की कामना है, बड़ा गौशाला बनाने की कामना है, बड़े पुस्तक वितरण करने की कामना है, काय के लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। काम तो वो भी कर रहा है लेकिन फिर भी निष्काम है, अतएव शांत है, इसलिए वो शांत है। तो काम करना नहीं छोड़ना है लेकिन कृष्ण के लिए काम करना है। अब हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम कर रहे हैं, बस दोनों में अंतर इतना ही है। इसको कृष्ण भावना बोलते हैं। जो अभी हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की भावना है, इसको बदल के कृष्ण भावना की ओर मोड़ना, बस इतने, इसको ही कृष्ण भावना अमृत कहते हैं। काम तो यही करना है। पहले प्रभुपाद जिन लोगों से मिले वो नशे में धुत रहते थे, और फिर वो कीर्तन में धुत रहने देना। तो धुत रहना तो बंद नहीं हुआ, नशा खत्म नहीं हुआ, लेकिन पहले जो मादक पदार्थ लेते थे उनको छोड़ दिया, अब हरि कीर्तन करने लगे, फिर वही काम कर रहे थे, वही रसी नाचते थे, वैसे ही खाते थे, बस अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के कृष्ण की सेवा में लग गए। बहुत बड़ा इसके इस काम को सिद्ध करने के लिए बहुत समय लगता है, इतना आसान नहीं। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो ये देवताओं की पूजा वाले, देवताओं की पूजा कौन करते हैं? जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की में अत्यधिक आशिक्त होते हैं। निस्संदेह है, अब प्रभुपाद जी कहते हैं निस्संदेह है। वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि जो धन स्वास्थ्य या विद्या का इच्छुक हो उसे देवताओं का पूजन करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी वेदों का खंडन नहीं करते, बोला वेदों में लिखा है जिसको धन चाहिए, जिसको स्वस्थ चाहिए तो सूर्य की पूजा करते हैं, धन चाहिए, बहुत से लोग हैं कुबेर की पूजा करते हैं, धन का देवता है, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और तीसरा क्या है, स्वस्थ, विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा करते हैं। तो ऐसे विधान है वेदों में, ये प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये वेदों में विधान है। भौतिकवादी व्यक्ति की मांगे अनेक हैं, अतः उसकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले देवता भी अनेक हैं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत प्रभुपाद ने एक बड़ा अशुद्धर सिद्धांत दुनिया में रख दिया। जब लोग पूछते हैं आपसे कि आप जो सनातन वैदिक धर्म के मानने वाले, जिनको हम आजकल हिंदू कहते हैं, बहुत देवताओं की पूजा करते हैं, तो उसका कारण क्या है? इच्छाएं घर ज्यादा हैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारी गवर्नमेंट में अलग विभाग है, जल का विभाग अलग है, विद्युत का विभाग अलग है, सेना का विभाग अलग है, पूछना उसको, आपका वित्त का विभाग अलग है, तो वो क्या कहेगा? हां कहेगा ना कहेगा? हां कहेगा। तो आपको विद्युत चाहिए तो विद्युत वाले के पास जाओगे, जल चाहिए जल वाले के पास जाओगे, और समस्या है न्याय चाहिए तो न्याय वाले के पास जाओगे, ठीक है ना। तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? हाँ, तो ऐसे ही जितनी तुम्हारी इच्छाएं उतने देवता, उसके पास जाओ, तुम सारे एक के पास जाओ, कहते तो भाई ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, और जाओ कहीं। यहां कहते यहां क्यों खड़े हो भाई, तुम्हारा यहां काम नहीं होगा। एक बहुत बड़ी बात दो लाइन में प्रभुपाद ने लिख ली कि बहु देवता पूजा का कारण बहुत इच्छाएं हैं। बहु देवता, इसको बोलते हैं पाली, पाली क्या बोलते हैं, दो शब्द हैं, पाली का मतलब ज्यादा, बहु देवता पूजत, और दूसरे होते हैं मोनू, ये हम और भगवान एक है, ये दो विभाग है। तो कोई पूछे कि बहुत देवताओं की पूजा क्या करते हो, तो क्या कहोगे? इच्छाएं बहुत है, जितनी इच्छाएं उतने देवता, इच्छाएं कम करो तो देवता कम हो जाएंगे, तो एक ही भगवान हो जाएगा। अगर भगवान की इच्छा करोगे एक भगवान रह जाए, भगवान तो ज्यादा है नहीं, इच्छाएं ज्यादा है इसलिए ज्यादा देवता है, और ज्यादा देवताओं की लोग पूजा करते हैं। अच्छा लगता है सिद्धांत के नहीं लगता है? बड़ा सुंदर दो लाइन में प्रभुपाद जी ने लिख दिया है, बड़ा अच्छी। अब क्या लिखे है? बड़ी अच्छी बात है। अतः उसकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले देवता भी अनेक है, ठीक है, जो ग्रह मेधी समृद्ध जीवन बिताना चाहते हैं, वो सामान्यता पिंडदान द्वारा देवताओं या पितरों को पूजते हैं। ऐसे व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत से वहीन होते हैं और भगवान की भक्तिमय सेवा करने में रुचि नहीं लेते। इस प्रकार का तथा कथित पवित्र तथा धार्मिक व्यक्ति निराकारवादी का प्रतिफल है। अब एक और सिद्धांत प्रभुपाद जी रख रहे हैं कि ये लोग जो जितने भी हैं ना, जो पितृ की पूजा करते हैं, पिंडदान करते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सारे लोग भक्ति में रुचि क्यों नहीं लेते हैं? आखिर इनका दिमाग खराब किसने किया? ये अच्छा प्रश्न है, क्या विचार है? हम कहते हैं कि तुम भक्ति करो, वो नहीं करते हैं, उनको ये बिगाड़ा किसने, गलत किसने उनको शिक्षा दी? प्रभुपाद जी उंगली उठा के कहते हैं ये निराकार वादियों के शिक्षाओं का प्रतिफल है। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए, भारत के अंदर निराकरवादियों की संख्या बहुत ज्यादा है। साधु, लाल कपड़े वाले सारे, नमो नारायण वाले, तुम भी नारायण मैं भी नारायण, हाँ बहुत ज्यादा है। नमो नारायण तो ठीक है, नारायण को नमस्कार हम भी करते हैं, लेकिन हम नारायण नहीं है, यह संख्या ज्यादा है। इन्होंने क्या गलत शिक्षा दी है? अब प्रभुपाद जी से यह सुनिए कि इनकी शिक्षा का प्रतिफल है कि लोग बहु देवता पूजा वाले हो गए हैं और कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया है? निर्विशेषवादी, निर्विशेष का मतलब भगवान में कोई विशेषता नहीं है, निर्विशेषवादियों की धारणा है कि परम सत्य के कोई रूप नहीं होता। परम सत्य निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं, रूप नहीं, ठीक है। अतः अपने लाभ के लिए चाहे जिस रूप की कल्पना करके अपनी पूजा कर ली जाए। अतः ग्रहमेधी या भौतिकवादी व्यक्ति कहते हैं कि वे भगवान की पूजा के लिए किसी देवता की पूजा कर सकते हैं। विशेष रूप से हिंदुओं में से जो लोग मांसाहारी है वे काली की पूजा को वरीयता प्रदान कहते हैं, क्योंकि देवी के समक्ष एक बकरे की बलि का विधान है। उनका कहना है कि कोई चाहे देवी काली की पूजा करे या भगवान विष्णु अथवा किसी देवता की, लक्ष्य एक सा होता है। ये अब आपको समझ में आई बात? भगवान का कोई रूप नहीं होता, जिसकी भी पूजा करो भगवान की पूजा है। ये उन्होंने ऐसे क्यों कहा पता है? उन्होंने ये इसलिए कहा कि आप मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूं। असल में उनका सारा ड्रामा ये है। अपनी जो पूजा कराना चाहता है वो पहले कहता सारे किसी की पूजा करो भगवान की पूजा है, तो महाराज हम किसकी पूजा करें? बोले मेरी ही करो, मैं ही भगवान हूं, इसमें क्या? बहुत आसान काम हो गया। और सारे ही गुरु अपने आप को ऐसे ही चेलों को मूर्ख बना रहे हैं। और प्रभुपाद ने इसके बाद जो शब्द लिखा हूं वो मैं अभी तक पढ़ा नहीं है, फर्स्ट क्लास रास्कलडम, पहले नंबर की बदमाशी है ये। इसके बाद अंग्रेजी में शब्द है फर्स्ट क्लास रास्कलडम। अब क्या हुआ? देवी की पूजा करो, ये तो भगवान है, सभी भगवान है। जब जब गुरु जी भगवान है तो देवी भगवान क्यों नहीं है भाई? फिर तो किसी ने कहा महाराज आप ही भगवान है, तो फिर हमारे घर में गणेश जी है वो भगवान के? हां भाई, उसको भी भगवान मानना पड़ेगा। फिर तो गधा है, बोला इसके ये भी भगवान है। टाइम जा रहा है, हमको याद आता है दो मित्र बड़े डाकू थे, जब उन्होंने बंटवारा किया तो एक को आया गधा बंटवारे में और एक को आया गाय और कुछ पैसे, दूसरे को धन मिला। और रास्ते में जा रहा था, उसका गधा मर गया। गधा मर गया तो खड्डा खोद के गधे को डालना था कि कोई पहचाने का गधा तो पकड़ देगा। जैसे खड्डा खोद रहा था उसको अंदर मिट्टी ऊपर रखी ना, तो लोग जाते हुए प्रणाम करके ₹5 रखा। उसने देखा ये क्या कर रहे हैं, उन्हें समझा किसी महात्मा का यहां जो है वो समाधि है। अब इसने कहा चोरी करने से अच्छा है, उसी के ऊपर पहले तो एक झंडा बांध दिया, फिर एक बहुत बड़ा बड़ा चबूतरा बना दिया। आस्ते आस्ते तो लोग उधर प्रणाम करें, पैसा रखें, और वो बहुत बड़ा समाधि में पूजा होने लगी। तो जो पुराना डाकू उसका साथी था, उसने सुना कि यहां बहुत बड़ा एक जो बड़े फकीर की समाधि है, पीर का दरगाह है, तो मैं भी जाके कुछ मिन्नत मांगू तो मेरा अच्छा चोरी का कोई काम हो। वो वहां आया तो देखा ये तो मेरा दोस्त यहां बैठा है, जो मेरा छात्र चोर था वो यहां का बड़ा महंत बैठा है। उसने कहा इसको अंदर बिठाओ, उसको वहां से हटाया। जब सबसे बाकी सब लूट लिया तो उसने अंदर से पूछा तुमको किसकी गद्दी मिली है भाई, किसकी गद्दी है ये, कौन से संत की? बोला गद्दी नहीं, गधा है इसके नीचे, जो बंटवारे में मिला था ना वो है, ये लोग गधे हैं, ये लोग कर्म मूढ़ है, ये गधे हैं। ओ इनको गधे की पूजा से मुझे पैसा मिल रहा है, यहां पुलिस वाला भी कस्टम वाला भी पैसे चढ़ा के जा रहा है, अब चोरी करके क्या करूं? तो ये किसी की भी पूजा करो तो गधे से। एक अखबार में किसी जमाने में आया था कि अंधे लोग ऐसे भी हैं जो पैसा ऐसी जगहों पे बहुत सा जाके धन चढ़ाते रहते हैं। तो किसी की देवी की पूजा करो, देवता की पूजा करो। प्रभुपाद ने एक जगह भगवत गीता में देखा है, वो कहते हैं सारे देवता भगवान का अंग है ना, विश्व रूप का, तो किसी की भी पूजा करो भगवान की पूजा हो गई ना। प्रभुपाद जी कहते हैं तो शरीर के अंदर कहीं से भी खाना खा लो, एक ही जगह खाना खाने की बहुत सारी जगह है, तुम हाथ से खा लो, पांव से खा लो, कान से खा लो, मुंह से क्यों खाते हो? तो जब खाना खाने के लिए एक मुंह है तो फिर कैसे कहते हो कि सारे अंगों से खाना खाया जा सकता है? तो सारे देवताओं की पूजा कैसे भगवान की पूजा हो गई? प्रभुपाद ने वहां खंडन किया है इस बात का। तो बहुत बड़ा इस निराकार वादियों ने लोगों को क्या बना दिया है? कर्म मूढ़ बना दिया, कर्म मूढ़ लोगों को प्राक मुख बना दिया है। कैसे? किसी की देवता, किसी भी देवता की पूजा करो भगवान की पूजा है। और फिर श्लोक भी बड़ा बोलते हैं, आकाशम पतत्तम तोयम यथा गच्छति सागरम, जैसे पानी आकाश से गिरता है सारा सागर में जाता है। फिर कहेंगे किसी भी देव की पूजो केशवम प्रति गच्छति, किसी भी देवता की पूजा करो केशव की पूजा हो गई। तो बहुत ये अब ऐसे लोग जिन्होंने विचारों को लोगों को भ्रम में डाल दिया है, किसी की देव किसी भी की पूजा को। कभी कभी देखेंगे पुराने जमाने में फिजी में तमाल कृष्ण महाराज ब्रह्म संहिता के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, तो गुजराती बूढ़ी माइया है, वह देवताओं के फोटो हैं, भगवान के फोटो हैं, तो पूछ रहे इनमें से भगवान कौन है? तो बुढ़िया कहती है बधानू भगवान मानू छू, बोला सबको भगवान मानती हूं। सबको भगवान मानती हूं, क्योंकि ये लोगों के अंदर धारणा एक गलत निराकारवादियों ने बिठाई है। इसलिए एक कृष्ण क्यों भगवान है इसके ऊपर उनको कभी आस्था होती ही नहीं है और उसके तरफ वो जाते ही नहीं है। अब प्रभुपाद जी दो लाइनें लिखते हैं, ये का मतलब ऐसे हर देवता को भगवान विष्णु के समान समझना, ये प्रथम कोटि का पाखंड है और ऐसे लोग पथ भ्रष्ट हो जाते हैं किंतु फिर भी उन्हें यही दर्शन पसंद है। लोग फिर इसी रास्ते पे जाते हैं, कोई सुख नहीं मिलता है। भगवत गीता ऐसे पाखंड को स्वीकार नहीं करता, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसी विधियां बुद्धिभ्रष्ट लोगों के लिए है। यहां इसी न्याय की पुष्टि की गई है और इसीलिए काम मूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियां खो दी हैं या जो इंद्रिय तुष्टि के लिए काम वासना से अंधा हो चुका है। काम मूढ़ लोग कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति से विहीन होते हैं और इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से अंधे बने रहते हैं। देवताओं के पूजने की भर्त्सना भगवत गीता तथा भागवत दोनों में की गई है। बस अब मैं दो लाइनों में समाप्त करने जा रहा हूं। देवताओं की पूजा का खंडन भगवत गीता और भागवत में किया गया है, यह तो ठीक है, लेकिन देवताओं का अपमान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। देवताओं की पूजा करने वाले को कम बुद्धि वाला कहा गया है, मूढ़ कहा गया है, देवताओं को नहीं। बहुत बहुत बड़ा बुद्धिमानी से यह निर्णय लेना, नहीं तो आप भी अपराध कर बैठोगे देवताओं का। देवताओं को नहीं कहा है कि वो मूर्ख हैं, देवताओं को नहीं कहा है कि उनकी अकल चली गई है, उनके पूजने वालों को कहा है। देवता तो भगवान के प्रतिनिधि हैं, एक एक विभाग के अधिकारी हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, पूजन नहीं। सम्मान और पूजन में अंतर है। आप पिता का सम्मान तो घर में करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन पूजन कृष्ण का घर में करते हैं, तो पूजन और सम्मान में अंतर है कि नहीं? तो देवता का मंदिर देखें तो उसको प्रणाम करना ये तो ठीक है, लेकिन उसको जाके कहना कि मुझे कुछ मेरी इच्छा पूरी करना, ये गलत है। अब समझ रहे हैं भाई, ट्रैफिक का पुलिस वाला खड़ा हो रास्ते में और आप कहो कि हरे कृष्ण कृष्ण भक्तों मेरी गाड़ी जाएगी लाल बत्ती से, तो ठीक है, गलत है, सही है, गलत है ना? तो ये देवता तो भगवान ने ऐसे खड़े किए हैं इस सारे संसार के काम के लिए, आप कहें कि हम तुमको राम राम भी नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं। जो जहां खड़ा है मिल जाए तो नमस्कार करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा पूछे आपको क्या चाहिए तो कहना चाहिए कृष्ण भक्ति में हम आगे बढ़े, ऐसी आशीर्वाद करो, बहुत अच्छा। तो हम सावधान ये कर रहे हैं कि ये देवताओं के पूजन करने वालों का खंडन है, देवताओं को न मूढ़ कहा गया है न कम बुद्धि वाले कहे गए हैं, इसलिए देवताओं का सम्मान निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान ने उनको अपॉइंट किया है भौतिक जगत के कार्य के लिए, वो भगवान के आज्ञाकारी है। उनके लिए भगवान इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृद्यंती युगे युगे, इंद्र जैसे देवताओं की सहायता के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो ये ठीक, एक भगवत की श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में तीसरे अध्याय में एक प्रभुपाद का विशेष एक तात्पर्य है कि जो मैच्योर ब्राह्मण है, जो मैच्योर भक्त हैं, वो किसी देवता का कभी भी अपमान नहीं करते, यहां तक के काल भैरव और काली का भी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भगवान के नियुक्त इस संसार के संचालक हैं, वो दूसरी बात है कि वो उनकी पूजा नहीं करते, लेकिन अपमान किसी का नहीं करते। बहुत गंभीर एक वहां तात्पर्य है। तो भक्तों को आज के श्लोक से क्या समझना चाहिए, पहले तो अपनी कामनाओं को छोटा करना चाहिए, नहीं तो देवता आपको पकड़ लेंगे। हां, कामनाएं बढ़ेंगी तो देवता बढ़ेंगे, सभी काम एक देवता तो करेगा नहीं। और मजा यह है कि एक कृष्ण सारे काम कर सकता है, अलग अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक को पकड़ लो सारे काम हो गए। अब आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पसंद करोगे कि एक का शरण लेना पसंद करोगे, बस बुद्धिमानी इसमें है। लेकिन एक को पहचान का शरण लेना, गधे की कब्र के मतलब कब्र के ऊपर मत चले जाना, बस इतनी बुद्धिमानी से काम लेना। हरे कृष्ण। तो हमको आज के श्लोक से समझना चाहिए, देवताओं का अपमान नहीं करना है, लेकिन कामनाओं के लिए देवताओं के पास नहीं जाना है। कामनाओं को कम करके और भगवान श्री कृष्ण का भजन करना है, नहीं तो संसार के बंधन से मुक्त हो नहीं सकते। और जो कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते हैं वो कामनाओं से अंधे हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई किसी का प्रश्न तो नहीं है ना? हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।